And their only grandson was lying within the womb of Uttara. Therefore, the Brahmastra is more effective and finer than the atomic weapons, was not as blind as the atomic bombs. When atomic bombs are discharged, they do not discriminate between the target and others. Mainly, the atomic bombs do harm to the innocent because there is no control. The Brahmastra is not like that. It marks out the target and proceeds accordingly without harming the innocent. Om Agyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutaha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam सब मैं सब एकत्रित वैष्णवों का आशीर्वाद चाहता हूँ और श्री गुरु और श्री प्रभुपाद और हमारी परंपरा के सब आचार्यों का आशीर्वाद चाहता हूँ श्रीमद् भागवत के संदेश को पढ़ने के लिए। आज जो श्लोक पर चर्चा की जा रही है उसमें यहाँ पर वर्णित है, सुत गोस्वामी जी शौनक ऋषि से कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ, जब पांडवों ने देखा कि उनके पास में ब्रह्मास्त्र आ रहे, तो उन्होंने अपने पांच अस्त्रों को हाथ में लिया अपनी रक्षा करने के लिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र जो है बहुत सूक्ष्म होता है। ये न्यूक्लियर वेपन आजकल लोग उपयोग करते हैं लड़ाइयों में, एटॉमिक बॉम्ब्स, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म होता है ये ब्रह्मास्त्र। और अश्वत्थामा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र फेंका था पांडवों को मारने के लिए, पांच पांडव बचे थे और पांडवों के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित जो कि माँ के गर्भ में लेटे हुए थे। ब्रह्मास्त्र जो है वो अणु या परमाणु के बने हुए अस्त्रों से भी ज़्यादा सूक्ष्म होता है, लेकिन वो ये जो बॉम्ब्स होते हैं उससे ज़्यादा दिशा के अनुसार जाता है, वो अंधा नहीं होता। आजकल के एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, जब फेंका जाता है तो वो देखते नहीं हैं वो किस पे गिर रहे हैं, किसको उसको हानि देनी है, किसको हानि करनी है, कौन निर्दोष है, वो देखते नहीं हैं। तो क्योंकि उनके अंदर एक बार फेंकने के बाद कोई वश में नहीं रहता। ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं है, ब्रह्मास्त्र से चलता है कि मान लो आपके पीछे आया ब्रह्मास्त्र तो आप कहीं भाग गए, आपने यू टर्न ले लिया तो वो भी यू टर्न ले लेगा, यू टर्न और वो आपको ही लगेगा, आपको मतलब जिसके लिए है उसको तो इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस थी। लोग बोलते हैं आजकल हम बहुत एडवांस्ड हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन एक्चुअली वेपन टेक्नोलॉजी उस समय ज़्यादा एडवांस थे। हम पढ़ते हैं महाभारत में और ये टेलीविज़न सीरियल पे भी आप लोगों ने शायद देखा होगा कैसे बड़े बड़े महारथियों का युद्ध होता है। पहली बात पता चलता है कि लोग वास्तव में योद्धा थे। आजकल तो लीडर्स कभी लड़ाई में आते नहीं हैं। कभी देखा आपने कारगिल पे भारत के प्राइम मिनिस्टर लड़ने जा रहे हैं, सावधान अभी मैं अस्त्र चला रहा हूँ। या आप देखो कि US के प्रेसिडेंट लड़ने जा रहे हैं या इराक के लीडर, वो बंकर्स में रहते हैं, है ना, बंकर्स या आश्रम में बंकर है वैसे नहीं, अंडरग्राउंड बंकर्स जिसे अगर बॉम्ब भी पड़ जाए तो कुछ नहीं हो उनको। इससे पता चलता है वो कितने निस्वार्थी हैं, नहीं जरूर शिवी महाराज की परंपरा में है, इतने निस्वार्थी हैं कि चाहे दुनिया को कुछ भी हो जाए, हमारा देश जल जाए, लेकिन मैं सुरक्षित रहूं, पर दुख दुखी एक्चुअली योद्धा को ऐसा नहीं होना चाहिए। योद्धा का मतलब क्षत्रिय, लीडर्स को क्षत्रिय होना चाहिए, नहीं तो अगर क्षत्रिय की ड्यूटीज नहीं आती तो ब्राह्मण, नहीं तो शूद्र बन के रहो। लेकिन आज क्या है कि सब जो नेता हैं वो अधिकांश किसी तरीके से वोट प्राप्त कर लेते हैं बाय हुक और क्रूक। एक्चुअली अगर आप देखो तो वोट प्राप्त करने का तरीका क्या है, आप अधिकांश लोगों से पूछो आप किसको वोट दे रहे हैं, बोलेंगे ये पार्टी को दे रहे हैं, तो वो बोलेंगे क्यों, क्योंकि इसका ज़्यादा बोलबाला है, इसके ज़्यादा पोस्टर्स देखे मैंने। लोग उससे डिसाइड करते हैं कितने किसके ज़्यादा पोस्टर्स दिखे। जो एक कोई बंदर भी हो, मतलब आदमी बंदर जैसे, और उसके बहुत सारे पोस्टर लगाए हों तो पॉपुलर हो जाएगा वो। जैसे एडवर्टाइजमेंट में हम देखते हैं आजकल लोग मोबाइल कंपनीज को या कोई प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो लोग अपने आप से डिक्लेयर करते हैं कि ये कंपनी फर्स्ट है, सबसे इंडिया में टॉप मोस्ट है, और सब ऐसा बोल रहे हैं। और यही पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस करते हैं इनडायरेक्टली, वो क्या बोल रहे हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। यानी पहला जो वैष्णव का लक्षण त्रिनादपि सुनी चेना, वो तो बिल्कुल ही नहीं है, पर्वत से ज़्यादा मादा अभिमानी है। तो इसलिए समाज में अगर चेंज करना है तो लीडर्स को चेंज करना चाहिए सबसे पहले। श्रील प्रभुपाद इसलिए बहुत समय बिताते थे कई बार पॉलिटिशियन से भी पिचिंग करने के। मैं स्वयं जब श्रील प्रभुपाद के दर्शन किए थे 77 में, तो उस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे रामराव अधिक, और श्रील प्रभुपाद इतने कॉन्फिडेंट थे, श्रील प्रभुपाद इनको लेटर लिखा कि आप आ जाओ यहाँ जुहू में, आपके लिए एक कमरा रखा है, फुल टाइम डिवोटी बन जाओ। ही रोट लेटर लाइक दिस टू द चीफ मिनिस्टर, यू कम एंड स्टे, वी हैव रूम फॉर यू। प्रभुपाद को कॉन्फिडेंस था कि भगवान पे विश्वास था, ऑफकोर्स लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी लेटर लिखा, इंदिरा गांधी से पर्सनली भी मिले, महात्मा गांधी को उन्होंने लेटर लिखा कि आप ये सब आपने इतना देश के लिए किया, और देखो अभी भी तुम्हारी इच्छाएं पूरे नहीं हुए, भारत पाकिस्तान अलग हो गया, अभी तुम आ जाओ भगवद्गीता का सही संदेश प्रचार करो। प्रभुपाद ने दोनों तरीके से बताया, आप आ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं आओगे तो बहुत खराब मृत्यु होगी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक फोरकास्टिंग जैसे, क्योंकि एक्चुअली शुद्ध वैष्णव होते हैं वो कोई जादूगर नहीं होते, लेकिन कृष्ण उनको परमात्मा से ज्ञान दे सकते हैं। कृष्ण इफ कृष्ण वॉन्ट्स ही कैन रिवील, इट्स नॉट लाइक कोई जादूगर नहीं है, कृष्ण बताते। जैसे आपने वो कहानी सुनी है, एक डिवोट अभी बहुत अच्छे डिवोटी हो गए, लेकिन पहले थोड़ा उनका इस्कॉन में आने से पहले वो उतने अच्छे भक्त नहीं थे, वो छोटी मोटी चोरी करते थे, बड़े नहीं लेकिन पॉकेट वगैरह में। और जब उन्होंने प्रभुपाद जी का फोटो देखा एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम का, तो उन्होंने सोचा मैं इस स्वामी जी से मिलूँगा और उनकी घड़ी चुरा लूँगा। आपने सुनी है ये कहानी है ना, गोल्डन वॉच थी। और जब वो वास्तव में प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने गए, एक्चुअली उस इच्छा से उन्होंने इस्कॉन जुहू फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर ज्वाइन करना बहुत आसान था, कोई VTA फुल टाइम वगैरह नहीं, जो आना चाहे। मुझे याद है जब मैं भी जुहू जाता था तो सब डिवोटीज बोलते थे आप आ जाओ फुल टाइम भक्त बन जाओ, क्योंकि भक्तों की इतनी कमी थी कि जो कोई भी आ जाए उसको स्वीकार किया जाता था, है ना। डिमांड और सप्लाई, यू नो, सप्लाई बहुत कम थी और ज़रूरत बहुत थी। तो उनको मंदिर में जब रह रहे थे और प्रभुपाद से मिलने गए, ये इरादे से कि मैं कुछ चुराऊंगा, लेकिन प्रभुपाद के संग से वो उनकी सारी इच्छाएं नष्ट हो गई, वो पूर्ण समर्पित हो गए। और प्रवचन के एंड में श्रील प्रभुपाद ने स्वयं घड़ी निकाल के उसको दी कि आपको ये चाहिए था। तो ये कैसे हुआ? कई बार हमने प्रभुपाद के जीवन में देखा है कि कई शिष्यों के लिए कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, इससे पता चलता है कि वो परमात्मा के कॉन्टैक्ट में थे। जितना व्यक्ति प्योर होता है उतना वो परमात्मा के कॉन्टैक्ट में रह सकता है। भगवान बोलते हैं ना गीता में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती थे। जो मेरी सेवा में लगा है कॉन्स्टेंट सततम युक्तानाम प्रीतिपूर्वकम, खाली सेवा इसलिए नहीं क्योंकि स्केड्यूल में नाम लिखा है, लेकिन प्रीतिपूर्वकम इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण प्रसन्न होंगे, कुंज बिहारी जी प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। भगवान उसको हृदय से गाइड करते हैं। एडवांस डिवोटीज होते हैं उनको हृदय से गाइडेंस मिलता है, लेकिन अगर हम एडवांस नहीं हैं तो हमें गाइडेंस लेना होता है स्पिरिचुअल मास्टर से, उनके प्रतिनिधि से। हम ये नहीं कह सकते कि वो मुझे हृदय से भगवान बोल रहे हैं कि अभी अभी सेवा मत करो, अभी आराम करो, ये हृदय से भगवान बोल रहे हैं कि चलो इंद्र तृप्ति करो। तो जो प्योरिटी के साथ व्यक्ति को भगवान के साथ संपर्क होता है, जब तक हमारा मन पूर्णतः शुद्ध नहीं है तो हम हृदय में स्थित परमात्मा की आवाज़ को सुन नहीं सकते। एक्चुअली एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी हैं, आत्मा और परमात्मा, और दोनों बहुत पास पास बैठे हैं एक ही हृदय में, लेकिन जितना व्यक्ति की शुद्धता होती है उतना वो भगवान की आवाज़ को सुन सकते हैं। भगवान कृष्ण हम आगे की घटनाओं में देखेंगे वो पांडवों की मदद करते हैं। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें उत्तरा भगवान को पुकार रही है मदद के लिए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण आप ही रक्षा करो, ये जो भयंकर अस्त्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे अपनी तो कोई उतनी ज़्यादा चिंता नहीं है लेकिन मेरे गर्भ में स्थित बालक की रक्षा करो। उत्तरा एक महान वैष्णवी है, उनका बहुत बहुत ही सौभाग्य है, वो एक महान पति के पत्नी हैं अभिमन्यु के, महाराज विराट उनके पिता वो भी महान भक्त हैं, जिनके आश्रय में पांडव एक वर्ष के लिए रहे अज्ञातवास में। एक्चुअली वो जो स्थान है, अभी रिसेंटली मैं कर्नाटक में गया था तो हुबली के पास एक स्थान है, इसको हंगल बोलते हैं, जहाँ पर महाराज विराट की सभा थी, अभी भी है, और स्पेशली वो स्थान है वहाँ पे जहाँ पर कीचक को मारा गया था। कीचक का नाम सुना है? कीचड़ नहीं, कीचक, उसका नाम कीचक, कीचड़ जैसा ही है वो जिसने द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास किया था, तो राज्य वहीं पर है। तो पांडव वहाँ पे रहे वो स्थान पवित्र हो जाते, यहाँ पर एक शुद्ध भक्त एक क्षण के लिए भी रहे वो स्थान शुद्ध हो जाता। तो उत्तरा जो है एक महान वैष्णवी हैं, एक महान राजा की पुत्री, एक महान वैष्णव की पत्नी और बाद में फिर से एक महान वैष्णव की माता, ये उनका भाग्य है। और साथ साथ वो यहाँ दिखा रही हैं अपने उदाहरण से एक ऐसे हमें कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मास्त्र को देखकर स्वाभाविक डर तो लगता ही है लेकिन उत्तरा निस्वार्थी हैं, उत्तरा ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोच रही बल्कि वो सोच रहे हैं कि गर्भ में स्थित बालक है उसकी रक्षा करो। आजकल तो माताएं कई बार गर्भ में स्थित बालक को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, दुर्भाग्य की बात है। इवन जो जानवर भी हैं वो भी ऐसा नहीं करते, पशु भी अपने बालक का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन आज मानव सभ्यता टेक्नोलॉजी तथाकथित टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांस्ड हो गई है कि लोग अपने नवजात ही नहीं जन्म से पहले ही बच्चों को मारने के तुले होते हैं। ये सभ्यता का पतन है। सभ्यता की महानता है जब गाय ब्राह्मण वृद्ध और बच्चों की रक्षा की जाए, ये सभ्यता की महानता है। वैदिक संस्कृति में ब्राह्मणों का विशेष आदर किया जाता है, गायों की विशेष रक्षा की जाती, वृद्ध पुरुषों को विशेष ख्याल दिया जाता, स्त्रियों की विशेष रक्षा की जाती और बच्चों का भी विशेष ख्याल रखा जाता। अभी आजकल क्या है कि जिसके जिसके पास लाठी है उसी का भैंस, जिसके पास पावर है वही व्यक्ति मैनिपुलेट करते हैं, और इवन फैमिली टाइज भी स्ट्रांग नहीं है आजकल, पारिवारिक भी जिम्मेदारियाँ बहुत कम लोग ठीक से निभा पाते हैं, और कई बार निभाना भी चाहते हैं तो सिचुएशन के कारण वो कर नहीं पाते। लेकिन ये एक सिद्धांत है कि जो किसी तरीके से कम शक्ति वाले हैं उम्र के कारण, जैसे वृद्ध अवस्था में हैं या बच्चे, उनका विशेष ख्याल रखना चाहिए। वैदिक संस्कृति जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है कि सब प्रकार के लोग को आध्यात्मिक प्रगति करने का अवसर मिले, ये एक मशीनरी की तरह है, एक व्हीकल की तरह है जिससे सब भाग जो हैं भगवान की तरफ आगे बढ़ें। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष माताएं प्रभुजीस और बच्चे बूढ़े सब साथ में आगे बढ़े। ये कल्चर है, केयरिंग कल्चर, जो कल्चर संस्कृति आधारित है एक दूसरे को मदद करने पर। आज के ज़माने में शायद किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट भी होता है, कोई व्यक्ति गिरा होता है और कई बार दूसरे व्यक्ति चले जाते हैं, कोई देखता नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है लोगों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और आध्यात्मिक प्रगति की लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए प्रचार कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोगों को समझा सकते हैं कि क्या आवश्यकताएं हैं। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि क्या समस्या का कारण है इस दुनिया में, कृष्ण भावना की कमी, कृष्ण को भूल जाना। उत्तराय दिखा रही है कि कैसे दुख की स्थिति में, भय की स्थिति में कृष्ण को पुकारना चाहिए। जिस तरह से ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर आ रहा है, उस तरह जो भी भक्त कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, माया के अनेक अस्त्रों का उसे सामना करना पड़ता है। हर क्षण माया आक्रमण कर रही है। स्पेशली अगर आप अपनी सेवाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अगर आप फुल टाइम सेवा में लगना चाहते हैं, तो माया देवी आक्रमण करती है। और अगर हम कृष्ण का आश्रय नहीं लेते तो हम पराजित हो जाते। जिस तरह उत्तरा पुकार रही है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण जल्दी मेरी मदद करो, हमें भी हर क्षण कृष्ण को पुकारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें कृष्ण से प्रार्थना करना है कि मेरे हृदय में, जिस तरह से उत्तरा का गर्भ परीक्षित खतरे में था, ऐसे जो मेरे गुरुदेव ने भक्ति की बीज डाली है मेरे हृदय में, वो हर क्षण खतरे में है। हर क्षण माया कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र के द्वारा हमें भक्ति के मार्ग से च्युत करना चाहती, अलग करना चाहती। एक वॉर है, तो भक्ति तीर्थ महाराज ने किताब लिखी, वॉरियर, स्पिरिचुअल वॉरियर, इज अ वॉर गोइंग ऑन, लड़ाई हो रही है। और लड़ाई में तो हमेशा कोई मीठी बातें नहीं होंगी। आपने शायद महाभारत सीरियल में देखा होगा कि जब कर्ण और अर्जुन मिलते हैं, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ गले लगा रहे हैं, बोल रहे हैं हरी बोल, कैसे हैं आप क्या खाएंगे, बहुत कठोर शब्द बोलते हैं एक दूसरे को, और उससे उनका उत्साह बढ़ता है। क्षत्रिय एक दूसरे को बुरे शब्द कहकर और थोड़ा, जैसे व्हीकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर वार्मिंग करना पड़ता है, उस तरह से वो उत्साह बढ़ाते हैं एक दूसरे का। तो माया देवी हमेशा आक्रमण कर रही है हर क्षण, और हमें हर क्षण कृष्ण को पुकारना है। कृष्ण हमेशा रक्षा करते हैं। कृष्ण ने उत्तरा को बचाया, उसके गर्भ को बचाया स्वयं परमात्मा रूप से। कुछ लोग बताते हैं कि परीक्षित की मृत्यु हो गई थी और भगवान कृष्ण ने उनको फिर से पुनर्जीवित किया, या जो भी कारण हो, जो भी एक्चुअल रीजन, लेकिन भगवान ने रक्षा की। महाभारत की लड़ाई में कितने प्रसंग हैं, कैसे भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें एक ही चीज करनी है जो अर्जुन ने की, कि अपने हृदय के हृदय में हमारे शरीर रूपी रथ पर कृष्ण को सारथी बना देना। बस कृष्ण हमारे जीवन को गाइड करते रहें, गुरु के रूप में या परमात्मा के रूप में या वैष्णव के रूप में। अगर हमारे रथ के ऊपर कृष्ण आरूढ़ हैं, कृष्ण विराजमान हैं, तो सफलता निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयभूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर मम। जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर विजय है, कोई दो राय नहीं है। दुर्योधन को भी चॉइस दी गई थी, एक अक्षौणी सेना और दूसरी ओर कृष्ण, और अर्जुन को भी चॉइस दी गई थी। अर्जुन ने तुरंत स्वीकार किया, कृष्ण मुझे चाहिए, इस सेना से क्या लेना देना, इतने सेना तो नष्ट हो जाएगी। सेना दोनों तरफ की नष्ट हो गई, लेकिन जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर विजय है। तो हम सब भी हर क्षण युद्ध कर रहे हैं, और अगर हम कृष्ण से गाइडेंस ले रहे हैं, कृष्ण के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, तो हम विजयी हो जाएंगे। जैसे 18 दिन का युद्ध है, वैसे हमारा भी 18 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल का या 100 साल का युद्ध है। और हर क्षण कृष्ण की मदद मांग, जो कृष्ण बोले वो करना है। भक्ति का सरल अर्थ है, कृष्ण मैं आपको समर्पित हूँ, आप जैसे नचाओगे वैसे मैं नाचूंगा, या तो कृष्ण नचाएंगे या जो कृष्ण को नचा रहे हैं वो नचाएंगे, बस नाचते रहना बस कृष्ण के लिए। जब महाभारत के युद्ध में एक दिन दुर्योधन बड़े क्रोधित होकर भीष्म को बोलते हैं कि हे पितामह, आप पक्षपात कर रहे हो, आप हमारी ओर से लड़ रहे हो, हमारे सेनापति हो, लेकिन आप पूरे शक्ति से नहीं लड़ रहे। अगर आप पूरे शक्ति से लड़ रहे होते तो पांडवों का अंत कर देते, लेकिन कि पांडव तुम्हारे पोते के समान है, इसलिए तुम अपराध, तुम उनके प्रति प्रेम दिखा रहे हो, और पूरे शक्ति से नहीं लड़ रहे। तो भीष्म देव बहुत क्रोधित हो गए। एक क्षत्रिय को क्रोध आता है शब्दों से, और एक ब्राह्मण जो है वो शब्द सहन कर सकता है। उसी तरह से एक ब्राह्मण शारीरिक हानि को नहीं सहन कर सकता, और एक क्षत्रिय उसको सहन कर सकता है। अगर आप एक क्षत्रिय का हाथ काट दो उसको उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन उसको बुरे शब्द बोलो तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो भीष्म को बहुत बुरा लगा। भीष्म कहने लगे, दुर्योधन यू आर रास्कल, मूर्ख हो तुम, तुमको क्या मालूम है जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर कैसे विजयी हो सकती है हमारी, मैं पूरी शक्ति से लड़ रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कल 5 पांडवों का वध कर दूंगा। और वो 5 बाण देते हैं कि ये 5 बाण आप रखो, 5 बाण, ये 5 बाण से बताते हैं। और दुर्योधन बोलते हैं मैं रखूंगा इसको, वो सोचते हैं मैं संभाल के रखूंगा। वो घर में ले जाते हैं, रूम में ले जाते हैं, अपने लॉकर में रख देते हैं। उसके बाद कृष्ण सब कुछ जानते हैं। कृष्ण इस वेदा हम समुदितानी वर्तमानी छे अर्जुन। आप ऐसा हमसे सोचिए, ये कोई व्यक्ति आपके सामने वीडियो कैमरा लगा के आपको देख रहा है तो आपका व्यवहार कैसा होगा? नहीं, यू विल बिकम वेरी कॉशियस एवरी मोमेंट, सावधान रहोगे। वही है, हमारा कैमरा बाहर नहीं अंदर से ही है। परमात्मा कैमरा है, इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, एवरी मोमेंट, एवरी थॉट भी कृष्ण मॉनिटर कर रहे हैं। और अल्टीमेटली नेक्स्ट जन्म जो है वो थॉट्स पर आधारित है, वचन पे नहीं। कृष्ण बोलते हैं अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त, व्हाट यू थिंक ऑफ यम यम वापी स्मरण भाव, जो स्मरण होता है। जैसे सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से व्यक्ति को अपने आप को कंट्रोल करना। तो कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, आप जाओ दुर्योधन के पास और 5 बाण मांग के आओ। तो युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, और दुर्योधन अभी तक क्या था कि नियम पालन हो रहे थे, पहले 10 दिन तक नियम पालन हो रहे थे युद्ध के, बाद में रागन उगा युद्ध शुरू हो गया। कोई नियम पालन नहीं करता। अभिमन्यु का वध बिना नियम के हुआ, उसके बाद पांडवों ने भी बिना नियम लड़ना शुरू किया, लेकिन पहले नियम पालन कर रहे थे। तो नियम के अनुसार अगर कोई अतिथि आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसको मनचाही चीज़ देनी चाहिए। तो दुर्योधन ने पूछा आपको क्या चाहिए, और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं आपको, पहले दुर्योधन ने इतना भी कहा कि मैं आपको राज्य भी दे सकता हूँ वापस बिना लड़ाई किए, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मुझे वो 5 बाण चाहिए। और दुर्योधन को देना पड़ा। हालांकि दुर्योधन दुष्ट था, वो लड़ाई के नियम के अनुसार कार्य कर रहा था, तो तुरंत वो 5 बाण लाके दे दिए। और जब ये समाचार भीष्म को पता चला तो समझ गए ये सब कृष्ण की, कृष्ण इज डूइंग एवरीथिंग, कृष्ण भगवान डायरेक्टली इंटरफेयर। एक्चुअली हर चीज़ कृष्ण ही करते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में कृष्ण पर्सनल इंटरफेयर करते हैं, कृष्ण व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। जिसने भगवान की शरणागति ली है उसके लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण इज सोल्ड आउट टू हिज प्योर डिवोटी। साधु नाम हृदय मयम मद अन्यते न जानाते, साधु मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, मैं भी साधु के अलावा कुछ नहीं जानता। साधु मेरे हृदय में रहते हैं, मैं साधु के हृदय में रहता हूँ। साधु मतलब भक्त, जैसे अर्जुन परम साधु हैं। तो अर्जुन भीष्म जब ये सुनते हैं तो इतने क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं कल मैं विशेष करके अर्जुन का वध करूंगा, क्योंकि अर्जुन सबसे ज़्यादा प्रिय थे कृष्ण को, और कृष्ण उनके रथ के ऊपर ही हैं। सिर्फ अगर कृष्ण अस्त्र उठाते हैं तो उनकी रक्षा हो सकती है। तो संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं भीष्म कि मैं कल अर्जुन का वध करूंगा। और वास्तव में इतना भयानक लड़ते हैं कि धीरे धीरे अर्जुन बिल्कुल अस्त्रहीन हो जाते हैं, उनका रथ टूट जाता है और उनका जीवन खतरे में होता है। तो कृष्ण देखते हैं कि उनके भक्त का जीवन खतरे में है, तो अपने सारे जो वचन लिया था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, सब वचन भूल जाते हैं। जो प्रेम होता है वो सब नियमों से परे होता है, स्पेशली भगवान कृष्ण का भक्त के प्रति प्रेम या भक्त का भगवान के प्रति प्रेम। तो कृष्ण टूटे हुए रथ को उठाते हैं एक अस्त्र की तरह, पहिए को, और ऐसे दौड़ते हैं, भागवत में बताया गया, जैसे एक शेर हाथी की तरफ दौड़ते हैं। उनका ऊपर का वस्त्र गिर जाता है, उनके बाल सब जगह पर धूसरित होते हैं, उनके शरीर पे धूल जमी होती है, उनकी आंखें लाल होती हैं, और कृष्ण भीष्म को मारने जाते हैं। और भीष्म हाथ जोड़कर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि वो कृष्ण स्वयं आ रहे हैं। ऑफकोर्स अर्जुन रोक लेते हैं भगवान को, लेकिन फिर भी कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण चाहते तो अर्जुन की रक्षा वैसे भी कर सकते थे बिना अस्त्र के, लेकिन फिर भीष्म की प्रतिज्ञा भंग हो जाती। या तो भीष्म की प्रतिज्ञा भंग होती, या अर्जुन की मृत्यु होती, या कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होती। तीन चॉइसेस थे और भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना स्वीकार किया। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, कौंतेय प्रतिजानी ही नमे भक्त्या प्रणश, यू डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माई डिवोटी विल नेवर पेरिश। आप घोषणा करो, कि मैं घोषणा करूं तो पता नहीं कौन बिलीव करेगा। कृष्ण इज नॉट फेमस फॉर बींग ऑनेस्ट, ही इज फेमस फॉर बींग प्रोटेक्टिंग हिज डिवोटी। ऐसे ही जब द्रोणाचार्य इवन भीष्म, इसके बाद भी भीष्म को पराजित नहीं कर सके, और पांडवों ने पूछा भगवान कृष्ण से कैसे भीष्म को पराजित किया जाए। भगवान कृष्ण बोले, आप भीष्म से जाके पूछो। तो नाइन्थ डे, जब महाभारत के 9 दिन पूरे हो गए, तो शाम के समय पांचों पांडव भीष्म के पास गए। और भीष्म तो स्वाभाविक प्रेम करते थे, हालांकि वो लड़ रहे थे, भीष्म ने उनको बड़ा किया। महाराज पांडु की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, तो उनके लिए पुत्र या पुत्र के समान थे। तो बड़े प्रेम से बातचीत करने लगे, बोले आप आए, मैं क्या कर सकता हूँ। और पांडव सिर झुका के हाथ जोड़ के बोले, हमें बताइए कि लड़ाई में आपको कैसे मारा जाए। कितना एम्बारेसिंग होगा नहीं, जिसको आप कोई नए व्यक्ति को भी बोलना डेंजरस लगता है। बस स्टॉप पे किसी मिले और बोले, हरि बोल, आपको कैसे मारे बताइए। वो व्यक्ति शायद आपको पुलिस स्टेशन ले जाएगा या कोर्ट केस हो जाएगा, है ना। और उस व्यक्ति से कहना जिसने आपको बड़ा किया है, जिसने आपको धनुर्विद्या सिखाने में मदद की है, जिसने आपको खतरों से बचाया है, उसके पास जाकर बोलना हाउ कैन आई किल यू, इट्स वेरी एम्बारेसिंग। अब भीष्म इतने खुश हो गए, नाचने लगे, बोले कि बहुत आनंद की बात है, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप विजय हो, और मैं जानता हूँ कि आप विजय नहीं हो सकते जब तक मैं बीच में हूँ, तो मेरा वध करने से ही आपको विजय मिलेगी। कितनी निस्वार्थता है भीष्म के कैरेक्टर में। मैंने बताया आजकल के पॉलिटिशियन युद्ध में आते ही नहीं है, और आए तो ऐसे कभी बोलेंगे कि हाँ मेरे को मारो नहीं। तो भीष्म इसलिए महाजन है क्योंकि उन्होंने हर स्थिति में वो सेवा स्वीकार की जो कृष्ण चाहते हैं। जब कृष्ण की इच्छा थी वो विरोधी पक्ष की तरफ से लड़ें, तो उन्होंने खुशी से स्वीकार किया। और कृष्ण की ये भी इच्छा थी कि अंत में 10वें दिन वो घायल हो जाएं, तो वो भी उन्होंने स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद भी हमेशा अपने आप को कहते, अपने आप को कृष्ण के हाथ में कठपुतली मानते। जब वो जलदूत में अपनी कविता लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि नचाओ 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 से मते, कृष्ण मेक मी डांस, आप मेरे को नचाओ। तो भीष्म उनको रहस्य बताते हैं कि आपके युद्ध में, आपकी सेना में जो शिखंडी है, मैं उसको एक स्त्री के या माता के रूप में देखता हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म में अम्बा थे। भीष्म जो है, भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी विवाह नहीं करने की, और अम्बा की इच्छा थी भीष्म से विवाह करने की, तो भीष्म ने मना कर दिया। फिर अम्बा ने जाकर उनके गुरु को कंप्लेन किया, परशुराम जी को। परशुराम वाज़ द गुरु ना भीष्म, तो परशुराम जी आए स्वयं और भीष्म को बोले कि भीष्म, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम विवाह करो। भीष्म बोले, गुरुदेव आप बहुत महान हैं, आप पूजनीय हैं, सॉरी लेकिन हरि बोल, मैं ब्रह्मचारी हूँ। ये एक आज्ञा है जो व्यक्ति डिसोबे कर सकता है गुरु की भी, जैसे चार कुमार को भी बोला गया था, ब्रह्मा जी ने बोला था कि आप विवाह करो। चार कुमार बोले कि आश्रम लाइफ अच्छा है। इनफैक्ट वो बड़े नहीं होना चाहते थे, नहीं, कितना इंटेलिजेंट है ना एक्चुअली चार कुमार, सब सोच के करते हैं, नहीं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जस्ट रिमेन 5 ईयर्स ओल्ड, यू नो, ऐसे नहीं कि कंट्रोल करने के लिए यू नो स्ट्रगल हो रहा है, ये हो रहा है, यू नो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, यू नो 5 ईयर्स ओल्ड। कितने लोग बोलते हैं कि पहले जमाने लोग बुद्धिमान नहीं थे, कितने ज़्यादा बुद्धिमान थे, यू नो वो जानते थे बुद्धि का कैसे उपयोग करना है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, डिसोबे कर सकते हैं। तो परशुराम जी बोले आप विवाह करो, भीष्म बोले आप बहुत महान हो, मेरे गुरु हो, हरि बोल, मैं तो ऑलरेडी आश्रम चुन लिया है मैंने, लाइफ लॉन्ग आश्रम। तो उनको बहुत क्रोध आया, उन्होंने भीष्म को चुनौती दी। आप सबने सुना होगा और देखा होगा शायद टीवी पर, दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, दिव्य अस्त्र भी उपयोग करने वाले थे, अंत में ब्रह्मा जी स्वयं आए देवता स्वयं आए और भीष्म को बोले कि आप हार मान लो, क्योंकि न तो तुम जीतने वाले हो न वो जीतने वाले, और युद्ध चलता रहेगा, सबको हानि होगी, आप हार मान लो, आप शिष्य हो। तो भीष्मदेव गए और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया कि मैं हार गया। परशुराम जी बहुत खुश हो गए, लेकिन विवाह नहीं करूंगा ये पहले से ही नक्की है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई डिसीजन। तो मीठे मीठे शब्दों में उन्होंने मना किया। ये भी डिवोटीज को पता होना चाहिए कैसे प्रेजेंट करना है ना अपने आप को। कई बार वही चीज़ को आप ऐसे ढंग से बोलो कि वो सीनियर डिवोटी को बुरा भी नहीं लगे, लेकिन आपका डिसीजन पता भी चल जाए, क्योंकि हम हर समय हर एक व्यक्ति की आज्ञा तो पालन नहीं कर सकते। इवन सीनियर डिवोटीज में भी सबको जो भी भगवान ने अथॉरिटीज रखे हैं उसको स्वीकार करना। तो इस तरह से भीष्म बताते, फिर अम्बा को बहुत गुस्सा आता है कि अब तो कोई भी मेरे से विवाह नहीं करेगा, भीष्म मुझे उठा के लेके गए थे रथ पे, वो स्वीकार नहीं कर रहे मेरे पुराने मेरे जो जिससे विवाह करना था मुझे, क्योंकि मेरी शल्य शल्य अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए अब मैं क्या करूं, मैं तपस्या करके भीष्म का नाश करूंगी। कई बार मटेरियल वर्ल्ड में मेंटेलिटी होती है कि यू नो या तो हमसे विवाह करेंगे, नहीं कर सके तो उसका मर्डर कर देंगे। अमेरिका में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी कारण होते हैं, कौन किसे मैरिज करना चाहता है, दो व्यक्ति करना चाहते हैं, और उसके कारण सबसे बड़े कोर्ट केसेस होते हैं। तो भीष्म अम्बा बहुत तपस्या करती है, शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं और शिवजी से वो आशीर्वाद लेते हैं कि मैं भीष्म का वध का कारण बनना चाहता। शिवजी बोलते हैं ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी लेकिन अगले जन्म में। लेकिन अम्बा को इतना उत्साह होता है भीष्म की हत्या करने के लिए कि अम्बा जो है तुरंत अपना देह त्याग कर देती है अग्नि में प्रवेश करके। उत्साह धैर्य आदि है ना, ये भी इतनी ईगरनेस होती है अपने मिशन को पूरा कर। तो भीष्म पूरा इतिहास बता के बोलते हैं इसलिए आप शिखंडी को आगे रखो, और आप सब जानते हैं कि कैसे अर्जुन पीछे से तीर मारते हैं शिखंडी को आगे रखकर, और भीष्म कुछ नहीं कर सकते, भीष्म देखते हैं कि ये स्त्री है। तो इस समय जो योद्धा हैं स्पेशली जो भीष्म और पांडव, एटलीस्ट पहले 10 दिन तक तो जो लड़ाई हुई वो सब नियम के अनुसार थे। तो कृष्ण ही है जो अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। बाद में जयद्रथ के समय भी जब अभिमन्यु का वध हो जाता है 6 महारथियों के द्वारा अन्यायपूर्वक दुष्टता से क्रूरता से, और जयद्रथ मुख्य कारण होते हैं। एक बार जयद्रथ जो है वनवास के समय आए होते हैं और द्रौपदी से दुर्व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, द्रौपदी बुलाती है और भीमसेन आके उसको खूब अच्छी पिटाई करते हैं और बेचारा रोते हुए चला जाता है। फिर जाकर वो शिवजी को प्रसन्न करते हैं और शिवजी बोलते हैं, शिवजी से वरदान मांगते हैं कि 5 पांडवों को मैं पराजित करना चाहता। शिवजी बोलते हैं देखो अर्जुन को तो आप नहीं पराजित कर सकते, लेकिन बाकी 4 पांडवों को कर सकते। तो जयद्रथ उस वरदान का उपयोग करते हैं चक्रव्यूह के समय, जब अभिमन्यु प्रवेश करते हैं उस समय बाकी 4 पांडवों को रोक देते हैं, और उसके कारण अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है क्योंकि मदद करने कोई नहीं आता। तो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि अगले दिन मैं जयद्रथ का वध करूंगा सूर्यास्त होने से पहले। जब जयद्रथ को यह समाचार, और यह भी बताते हैं अगर मैं वध नहीं करूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश करूं। तो जयद्रथ को जब पता चलता है कि ऐसे से मेरे वध का योजना अर्जुन ने बनाई है, तो दुर्योधन को बोलते हैं छुट्टी, अभी VRS लेता हूँ मैं भागता हूँ। लेकिन दुर्योधन उसको बहुत समझाते हैं और किसी तरीके से उसको रखते हैं। तो अगले दिन युद्ध में सारी सेना अर्जुन को रोक रही होती है, अर्जुन को आगे बढ़ने, स्वयं द्रोणाचार्य रोक रहे होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को आगे बढ़ा रहे होते हैं। फिर भी दोपहर का समय होता है, शाम का समय हो जाता है और जयद्रथ बहुत दूर होता है। और आप सब जानते हैं ये कथा कि कैसे भगवान कृष्ण अपनी शक्ति से सूर्य को छिपा देते हैं और जयद्रथ बहुत खुशी से नाचने लगते हैं। दुर्योधन पार्टी हरि बोल के बहुत खुशी से नाच रहे होते हैं, और जब जयद्रथ इस तरह व्यंग्यपूर्वक अर्जुन की बेइज्जती कर रहा होता है कि कब आप अग्नि में प्रवेश करोगे, और ठीक उस समय भगवान कृष्ण अपनी शक्ति से सूर्य को फिर प्रकट कर देते। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन देखो ये सामने सूर्य है और ये जयद्रथ है आप अस्त्र चलाओ। और अर्जुन अपने एक ही तीर से जयद्रथ के सिर को काट के जानबूझ के तो दूर भेजते हैं जहां पर उसके पिता तपस्या कर रहे होते हैं, वो भी कुरुक्षेत्र में होता है समंतक पंचक के पास। और जब उनकी गोद में यह सिर आता है उनकी आंखें बंद होती हैं तो वो घबरा जाते हैं और वो सिर को फेंक देते हैं। और क्योंकि उनके पिता ने ही उनके सिर को जमीन पर गिराया तो इसलिए उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जयद्रथ को यह वरदान मिला था कि जो भी उसके सिर को जमीन पर गिराएगा वो व्यक्ति मर जाएगा। ये बदमाश बहुत लोग अच्छे अच्छे आशीर्वाद ले लेते हैं ऐसे जिससे उनकी लंबी उम्र हो जाती है। सब लोग डरेंगे अगर ऐसा बताया जाए कि जो व्यक्ति इसको मारेगा वो स्वयं मर जाएगा, तो कोई मारने नहीं जाएगा। लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण के इतने केयरफुली तीर मारते हैं कि सिर वहाँ नहीं गिरे, दूर जाके गिरे। इससे पता चलता है उस समय जो वेपनरी थी कितने प्योर और कितने टारगेटेड थे। आजकल तो रात के समय बॉम्ब डाल देते हैं सिविलियन एरिया में, जो लड़ाई कर रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, और जो बेचारे बच्चे हैं या माताएं हैं वृद्ध हैं उनकी हत्या हो जाती है। अभी हिरोशिमा नागासाकी वहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट थोड़ी किया गया कि किस पर बॉम्ब डालना है। लेकिन पहले जमाने में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मास्त्र वॉज टारगेटेड। ऐसे दो तीन व्यक्ति बैठे हैं और आपने ब्रह्मास्त्र फेंका तो ऐसे नहीं कि तीनों की मृत्यु होगी, नहीं, वो दो के बीच में से तीसरे के पास जाएगा। आजकल लोग टारगेटेड मिसाइल्स और अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तो व्यक्ति को सेंसिटिव है। तो इस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन की हर बार रक्षा करते हैं। और लास्ट में मैं अंत करना चाहूँगा कर्ण के वध की कहानी से कि कैसे कर्ण, आप सब जानते हैं कि वो अर्जुन के भाई होते हैं एक दृश्य में जाए, क्योंकि वो भी कुंती माता के ही पुत्र होते हैं। तो जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू होता है, कर्ण वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे, कुछ दृष्टि से अर्जुन से भी ज्यादा, कुछ दृष्टि से वेपनरी में, लेकिन अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे। जब इंद्र कवच और कुंडल लेने के लिए आते हैं कर्ण के, तो उसके त्याग से इतने प्रसन्न होते हैं कि उनको एक शक्ति देते हैं जो अचूक शक्ति होती है, और कर्ण ने वो शक्ति को संभाल के रखा होता है सिर्फ अर्जुन के लिए। लेकिन महाभारत की लड़ाई के बीच में भीम के पुत्र घटोत्कच बहुत शक्तिशाली होते हैं, और बीच में कहीं प्रकट हो जाते, फर्स्ट डे सेकेंड डे नहीं होते, बीच में एंट्री होती है उनकी, और वो आप सब ने सुना है कैसे लड़ रहे होते हैं। और दुर्योधन बोलते हैं अब शक्ति का उपयोग करो, कर्ण बोलते हैं नहीं, ये तो मैंने रखा है अपने मित्र के लिए अर्जुन के लिए। लेकिन घटोत्कच की शक्ति को देख के अंत में कर्ण को उपयोग करना ही पड़ता है। जब घटोत्कच की मृत्यु होती है तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और भीमसेन को विश्वास नहीं होता कि मेरा लड़का मर गया और भगवान कृष्ण हंस रहे हैं। अभी अर्जुन का पुत्र मरा था तो बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण को समझाते हैं कि आज तुम्हारे पुत्र ने हम सबको बचा दिया है, आज तुम्हारे पुत्र ने अर्जुन के जीवन को बचाया है, अर्जुन की रक्षा यानी पूरे पांडवों की रक्षा। तो ये एक शक्ति तो नष्ट हो गई होती है, लेकिन युद्ध के दौरान एक और शक्ति कर्ण अर्जुन पे छोड़ते हैं, और उसके ऊपर तक्षक सांप या तक्षक सांप का कोई हिस्सा नहीं, उनका पुत्र होता है, उनका पुत्र वो भी प्रकट होता है, और ये अस्त्र से अर्जुन को कोई बचा नहीं सकता था। उस समय भगवान कृष्ण अपने चतुराई से रथ को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, घोड़ों को झुका देते हैं, और जो अस्त्र अर्जुन के गले को काट के उनके सिर को धड़ से अलग करने वाला था वो उनके मुकुट को नष्ट कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण की चतुराई है। आप कह सकते हैं कि वो नियम के विरुद्ध था, या भगवान ने द्रोणाचार्य का वध कराया, झूठ बोल के कराया, लेकिन ये भी कृष्ण के ट्रिक्स हैं, इसे नास्तिक लोगों की श्रद्धा कम रहे। हम सुनते हैं कि भगवान कृष्ण को तीर मारा गया था, एक हंटर ने मारा था, तो जो नास्तिक लोग होते हैं उनकी श्रद्धा कम हो जाती, लेकिन भक्त जानते हैं कि ये सब कृष्ण ये सब चीज़ों से परे हैं। कृष्ण के लिए झूठ क्या, सत्य क्या, कृष्ण सब मंडेन मोरालिटी से परे हैं, और जो कृष्ण चाहते हैं वही सत्य है, वही करेक्ट है। और अंत में जब कर्ण को दो शाप मिले थे, एक उनके गुरु परशुराम के द्वारा, क्योंकि उन्होंने धोखे से विद्या सीखी थी, तो परशुराम जी ने शाप दिया था कि जब तुम्हें अस्त्रों की बहुत आवश्यकता होगी उस समय तुम भूल जाओगे, मंत्रों के, मंत्र याद नहीं आएंगे। और एक ब्राह्मण ब्राह्मण के गाय या बछड़े की हत्या की थी उन्होंने गलती से, तो उन्होंने श्राप दिया था कि आपका रथ फंस जाएगा। तो यही होता है, युद्ध करते करते कर्ण का रथ फंस जाता है। कर्ण बोलते हैं कि अभी अभी मत चलाओ अस्त्र, मेरा रथ फंसा हुआ है, युद्ध के नियम के विरुद्ध है। भगवान कृष्ण उनसे पूछते हैं कि आपके नियम उस समय कब थे, जब भरी सभा में आपने द्रौपदी की बेइज्जती की थी, आप 6 लोगों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी, तब नियम कहाँ थे? अब मृत्यु सामने मंडरा रही है, इसलिए सब अच्छे नियम याद आ रहे हैं आपको। और फिर भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध करते। तो ये भी और दूसरी सब घटनाएं हैं, उसे सिद्ध होता है कि कृष्ण ही है सब कुछ, सब भक्त के लिए कृष्ण ही सब कुछ है, बस वही रक्षा कर रहे हैं। हमारी भी भक्ति में जो युद्ध है उसमें सिर्फ कृष्ण ही है जो मदद कर सकते। तो अगर हम कृष्ण को अपने रथ पे हमेशा रखते हैं नाम के रूप में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कृष्ण जीवा पे हमेशा है तो हमारी रक्षा निश्चित है। यही 5 पांडव फिर से आते हैं गौर लीला में, रामानंद राय, वाणीनाथ राय, गोपीनाथ पटनायक, कलानिधि और सुधानिधि, ये 5 भाई होते हैं। और उनके पिताजी महाराज पांडु भवानंद राय के रूप में आते हैं। ये 5 पांडवों का युद्ध होता है, जो 5 पांडव जो युद्ध कर रहे होते हैं वो इधर राजा के पार्षद के रूप में होते हैं। तो गोपीनाथ पटनायक ने कुछ पैसे लिए थे और नहीं भरे थे, उसके कारण उनको मृत्यु दंड दिया जा रहा था, और सब चैतन्य महाप्रभु के आधार कर मदद मांग रहे थे। महाप्रभु बोले मैं क्या करूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं कुछ नहीं, आप जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करो। और सब भक्तों की प्रार्थना से भगवान हरिचंदन के द्वारा संदेश भेज के उनके जीवन की रक्षा करते हैं। तो भक्त के लिए एक विश्वास होना चाहिए, रक्षति कृष्ण इति विश्वास। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, सरेंडर के 6 लक्षण हैं, उसमें से एक है रक्षति कृष्ण इति, कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। और रक्षा का एक सही अर्थ है न केवल शरीर की रक्षा, शरीर तो एक दिन नाश होने वाला है, लेकिन हमारी जो भक्ति की है, जो भक्ति में श्रद्धा है, जो भक्ति में हमारी इंटीग्रिटी है, उसको भगवान कृष्ण हमेशा रक्षा करेंगे। हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे नाम में श्रद्धा जितनी है वो बनी रहे और बढ़ती रहे, जिससे मैं अंत समय तक गा सकूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन से पिछले महीने गुजरा, और मैंने सुना कि पूना में भी भक्तों ने बहुत प्रार्थनाएं की थी मेरे ऊपर कृपा होने के लिए। मैं आप सबका बहुत ऋणी हूँ, हालांकि काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से मैं गुजरा, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से बहुत स्मूथली हो गया सब कुछ, और अब मैं फिर से आपकी सेवा कर सकता हूँ। आप सब आशीर्वाद दो कि मैं हर क्षण कृष्ण को याद कर सकूँ। जो फिजिकल हार्ट तो अब ठीक हो गया, लेकिन स्पिरिचुअल हार्ट भी ठीक हो जाए, जो गंदगी है काम क्रोध वो जल्दी से दूर हो जाए। ब्लेस मी ऑल ऑफ यू। हरे कृष्ण।